वंदे जगद्गुरुं ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रिय आत्मन, भजन में दास प्रसाद ने भी, आसिफ ने भी विचार दिया कि श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध का आधार लेकर के इसका व्यवहारिक स्वरूप, सामाजिक वैज्ञानिक क्या है, उस पर विचार करें। भारतीय संस्कृति में जो भी व्यवस्था है उसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ जानकारी है, मनी का सर्कुलेशन है, एकता है, संगठन है, वो ज्ञान है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द प्रकट हुआ है। हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, हमारे पिता ने हमें जीवन दिया, माँ की गोद में हमने प्रथम श्वास ली, पालन पोषण किया, तो आप देखेंगे कि माता पिता के न रहने से पुत्र न रहने के बाद अपने माता पिता का श्राद्ध करता है। हम अपने परिवार को याद करते हैं। एक बड़ी व्यवहारिक बात बताएं तो बड़े प्यार से कहें, पहले बारोट आते थे, हमारा पूरा खानदान बताते थे, फिर आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, तीर्थ यात्रा कब किए, दान पुण्य कितना किया, तो हमें हमारे परिवार का, एक जो वृक्ष है, फैमिली ट्री है, परिवार का जो वृक्ष है उसका पता लगता था। एक जानकारी मिलती थी कि हम कहाँ से आए, कैसे हुए, तो बड़ी अच्छी बात थी। तो कोई अपने दादा का नहीं करता। मेरे पिता अपने पिता के जाने के बाद किया, मेरे पिता जाएंगे मैं करूंगा, मैं जाऊंगा तो मेरा पुत्र करेगा। ये परिवार का वृक्ष, शाखाएं, शाखाओं में से कितने शाखा निकली, कहाँ लोग गए, कहाँ रहे, हम कहाँ से आए, जानकारी मिलती थी, एक इतिहास मिलता। तो रात का समय वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये थोड़ा वासनामय, इस वासना को रूपांतरित करने के लिए इसके पहले जो गणेश पूजन हुआ, 10 दिन तक आप रहे, गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं, आपने 10 दिन तक जो कुछ किया, भजन पूजन नेत, उस समय में हमारी बुद्धि प्रज्वलित होती है और जो मन में विकार है उसमें परिवर्तन आता है, रूपांतरित तो नहीं होता, परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे स्वामी जी परिवर्तन रूपांतर में क्या अंतर है, अंग्रेजी में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन का अर्थ है कि पुनः अपनी अवस्था पे आ जाना, जैसे पानी का बर्फ के रूप में बदलना, ये परिवर्तन है। दूध को जमा करके दही में बदलना, ये रूपांतर है। मूल परिभाषा है, परिवर्तन फिर वापस जा सकता है, बर्फ फिर पानी के रूप में वापस जा सकती है, लेकिन एक बार दूध व्यवस्था से दही बन जाने के बाद ला कोशिश करो, लेकिन वो फिर दूध के रूप में नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, वो काम करना। तो ये जो सारी विधियां हैं इसमें परिवर्तन ज्यादा है, रूपांतर अगर एक बार हो जाए, आपका मनोविज्ञान भी कहता है कि पारस के संपर्क में आकर लोहा जब सोना बन जाता है तो ये रूपांतर। लाख आप कोशिश करें, कोई व्यवस्था भी अपनाएं, पारस के संपर्क में आकर लोहा जब सोने के रूप में बदल जाता है तो विज्ञान से कहता रूपांतर, अर्थात किसी भी व्यवस्था से सोना फिर लोहे के रूप में नहीं बदल सकता। तो हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत आता, हम कथाएं सुनते हैं, स्नान करते हैं, ये ठीक है, लेकिन फिर वहीं को वहीं हो जाते हैं। हमने कथा सुनी, मन पिघला, करुणा आई, दया आई। अक्सर हमने देखा है और लोग कहते भी हैं कि कोई दृश्य देखेंगे नाटक में या कहीं भी तो उनके मन में काफी दया भाव आता है, करुणा आती, लेकिन नाटक गृह से निकलने के बाद घर आते आते सब खत्म हो जाता, फिर वही रोना, वही धोना, वही चिल्लाना। कथाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मूल बात है कि हमारे जीवन में बार बार परिवर्तन आता रहेगा, चलेंगे फिर वापस जाएंगे, चलेंगे वापस जाएंगे, क्या ये जिंदगी है? आपको मालूम है कि दूध बहुत अच्छी चीज है, इसे अमृत कहा गया, गाय के दूध को अमृत माना गया, लेकिन अगर आपको मालूम है कि इसमें जहर है तो कौन स्वीकार करेगा? जगत से भागना नहीं, मैं आपको पलायनवादी नहीं बनाना चाहता, आप मुकाबला करें, लेकिन जगत को समझ लें। और जगत को जब समझ लेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। श्राद्ध के पीछे जो भावना है वो यही है कि जगत को समझो। मेरे पिता के पिता नहीं रहे, उनके पिता नहीं रहे, रहा इतिहास है, हम भी नहीं रहेंगे, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर जीवन में रूपांतर हो गया, हमारे मन में से आसक्ति निकल गई, मोह निकल गया, वो मोक्ष है क्या? ये मोह का चाहिए। राजा जनक का इतिहास आपके सामने है, सब कुछ उनके पास है लेकिन मोह नहीं, उसका उपयोग किया। मैं आपसे नहीं कहता कि आप सन्यासी हो जाओ, घर छोड़ दो, लेकिन घर के प्रति, जगत के प्रति जो आसक्ति है, दुख का कारण आसक्ति है, घर नहीं है, जगत नहीं है। राज जनक इतिहास आपके पास है, तो श्रद्धा से जब बात को समझ लेते हैं तो करेंगे हम सब। गीता का प्रहार किस पर है? आसक्ति पर है, कर्म पर नहीं है। अर्जुन के मन में जो आसक्ति है उस पर प्रहार गीता ने किया है, बाकी अर्जुन तो कर्म छोड़ के भाग रहा। तो आपको पलायनवादी नहीं बनना है, लेकिन मर्म को समझना है। हम आप बहुत ही परेशान हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, दो चार फोन मेरे पर आए, स्वामी जी सुना है कि दुनिया आधी खत्म हो रही है। मैंने कहा आप और हम नहीं खत्म होंगे, मारो गोली। अरे होगी खत्म तो खत्म होगी, उसमें क्या, खत्म तो हम रोज हो रहे हैं। जब आप सो जाते हो खत्म ही हो जाते, उठते हैं भगवान कृपा है, नहीं सोते ही रहिए। लय तो रोज हो रहा है, महाप्रलय हो जाए, लेकिन हम भविष्य कितना डर रहे हैं जो कि है ही नहीं। कितना भय आपके मन में, और ये असलियत को समझ लें। तो पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने विधि विधान बताया, मेरे पिता भी नहीं रहे, उनके पिता नहीं, तो हम भी एक दिन नहीं रहे। तो हम ऐसा कर्म क्यों करें कि जो जीवन मिला है उसमें दुखी रहे, दूसरों को दुखी करके जाए। पहले जब था तो गरुड़ पुराण वगैरह सुनते तो उसमें सब आता है, ये आता है। कई बार लोग मुझसे पूछे स्वामी जी मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मैंने कहा मैं जीते जी आपको नरक में देख रहा हूं, तो मरने पे क्या सोचा, जीते जी नरक में देख रहा हूं। स्वामी जी आपने ठीक कहा, हम जीते जी लोगों को नरक में देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगी, स्वर्ग क्या है, आप सबका जन्म हमारा जन्म स्वर्ग में। लेकिन आज हम अपने कर्म से अपने घर को, अपने परिवार को, समाज को, देश को कुछ भी किया नरक बना दिया। कोई विशेष स्थान का नाम नरक और स्वर्ग नहीं है, ये आपका आश्रम है, प्रेम से रहिए, सेवा भाव से रहिए तो स्वर्ग है, आनंद है। हम लड़ने लगे, झगड़ने लगे, मेरे बाप दो चेलों में झगड़ा हो जाए, कोर्ट में केस हो जाए, तो ये नरक बन जाए। जब ये आश्रम आपने बनाया, मैंने बनाया, जब आश्रम मेरा नहीं रहा तो जो लड़ रहे हैं उनका कब तक रहेगा। आपने 50 लाख की कोठी बनाई, वो कोठी आपके साथ कब तक रहेगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे बात कौन संभालेगा, मैंने कहा जीते जी आप संभालो, बाद में देखा जाएगा, जीते जी आप संभालो, आपके बाद वाली चिंता नहीं। तो हम लोग 80% तो बेकार भविष्य में रह करके वर्तमान को नष्ट किए। श्राद्ध तो पहले ये देखिए कि मेरे पिता माता पिता नहीं रहे कि मैं भी नहीं, हम जिसका श्राद्ध कर रहे हैं हमारे बाद भी कोई हमारा श्राद्ध करेगा। हम शमशान में जा रहे हैं किसी को लेकर, तो एक दिन हमें भी लोग शमशान में लेकर जाएंगे, वो बोला कौन। तो जो गलत है, किसी का छीनना है, गलत रास्ता है, उसे हम बदल। दुख का कारण कर्म नहीं है, दुख का कारण गलत रास्ता है, मर्यादा के बाद हम स्वयं अपना दुख बोल लें, कोई हमें दुखी नहीं करना। एक बड़ी हंसी की बात सुनाए आप, और ये समझने की बात है, जानने की बात। मैंने किसी को धक्का दिया, खाड़े में गिर गया, मुझसे लड़ने लगा, फिर मैं चिल्लाया ये आदमी मुझे मार रहा है, मुझे बचाइए, आ गए आप लोग। लेकिन जरा विचार कीजिए, जब दूसरे का भला आप नहीं सोच रहे हैं, दूसरे को खाड़े में डाल रहे हैं, तो एक दिन कोई हमें भी खाड़े में डाले। एक कर्म का यथा कर्म तथा लाभ इसका आसान है। आप दूसरे को खाड़े में से निकालने की बात कीजिए, उसकी जगह हम डालने की बात करते हैं, फिर रोते चिल्लाते मुझे बचाओ बचाओ। एक व्यवहारिक बात आपको, और समझने की बात है, जानने की बात है, ऐसा नहीं कि नहीं समझने की बात। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जब बताऊंगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी। परमात्मा नाम सुख का है और हम सब परमात्मा के अंश है। एकम सद विपरा बहुधा बदन, हम सब परमात्मा के अंश हैं। और विज्ञान भी कहता है आप जहां से आए उसका गुण लेकर आए, उसमें सत है आप में भी है, उसमें चेतना आप में भी है, वो भी आनंद स्वरूप आप हैं। तो दुख आ कहां से गया, ये दुख आपने बोल लिया। चाहे मैं हूं कि आप हैं कि कोई भी, पेपर उठा के देखिए, कुछ महात्माओं का भी इतिहास है, कुछ क्लास वन ऑफिसर का भी है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, सभी का इतिहास है। और देखें कि उसके पीछे उन्होंने स्वयं लालच में आकर, ना समझी के कारण, मर्यादा के बाहर जाकर के कर्म किया तो दुख आया। सीता नाम है जीव, रावण दुख तो सामने खड़ा है, वो कहता आप मर्यादा भंग करें और मैं पकड़ू आपको। तो आपके कर्म की जो मर्यादा है, मैं यही पूछे या देते स्वकेते या था मर्यादा, तो आप स्वयं मर्यादा तोड़ रहे हैं। बड़ी सुंदर बात वैज्ञानिकों ने कहा, प्रियात्मन रावण व्यवहार में दुख है, रावण की ताकत नहीं कि अंदर जा सके, ये समझने की बात। आज पूरे वैज्ञानिक कहते भारत को समझने की कोशिश करो, रावण में सिद्धियां बहुत है लेकिन रावण की ताकत नहीं है कि अंदर जा सके। फिर उसने नाटक किया तो वैज्ञानिक कहते हैं देखो, सीता अपनी मर्यादा के अंदर भी रह सकती थी, बाहर भी जा सकती। सीता नाम हम और आप, केवल नारी का नाम, हम मर्यादा में रह भी सकते हैं, मर्यादा के बाहर भी। लेकिन जो गलत है, जिसके विचार गलत है, जो रावण है, वो किसी न किसी हमें लालच दे करके हमारी मर्यादा का उल्लंघन कराएगा, फिर हाथ पकड़ करके दबोचेगा। बाकी उस गलत आदमी की ताकत नहीं है कि गलत बात लेकर हमारे आपके अंदर आ जाए, हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता, हमारी मर्यादा में, लेकिन मर्यादा से लालच नहीं। कितने लोग मैंने देखा है कि लालच में फंसे और फिर मुझे कहते कहावत नहीं कही गई कि मछली भी लालच में फंसती मुंह में कांटा आ जाता। कितने उदाहरण दिए गए, आप सुन के ताजु करेंगे, कितनी बार पढ़े लिखे लोग मेरे पास आए, कहते स्वामी जी ऐसा कपड़ा था, ऐसा चेहरा था। मैंने क्या बात है, कहा डबल के चक्कर में मेरा पैसा लेके गया। मैंने कहा जब डबल की बात किया तब नहीं पूछने आए, और अभी कहते हैं ऐसा कपड़ा था, ऐसा कपड़ा था, जब डबल की बात किया तब पूछने नहीं आए, अब चला गया डबल। मैंने कहा पढ़े लिखे तो पढ़ा लिखा है, ये डबल के चक्कर वाली बात समझ में नहीं आ रही, जा सोचो तो सही। अब यही डबल के चक्कर की लालच हुई तो आप मर्यादा से बाहर गए, और तो आपके क्या मर्यादा है, इतना जानना चाहिए कि ये सब मिथ्या है। के लाल जादू दिखाता है, अगर वो साधु बन जाए तो हम सारे साधु की छुट्टी हो जाए, इतना आपने देखा होगा, मैं तो इशारा करता हूँ। इसका गुरु पीसी सर का, वो तो बहुत जबरदस्त था, बरसात भी करा देता था, आपकी गाड़ी भी रोक देता था, मजा लग जाए। अरे छैल मोहम्मद गुजरात का, सुना होगा आपके गुजरात का था, वो ट्रेन से उतर जाए तो ट्रेन भी चलने लगे, लेकिन जब अच्छे साधु को सताने लगा तो उसकी मौत बड़ी खराब हो गई। एक बात का तो ये पूरा विश्व कहता है सीता नाम सीता नहीं हम आप, मैं राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, संत हूँ, शंकराचार्य हूँ, फलाना हूँ, ये। लेकिन हमारी भी मर्यादा है, अगर मर्यादा के बाहर जाएंगे तो दुख हमें छोड़ने वाला, लेकिन दुख की ताकत नहीं है कि वो हमारे पास, हम उसके पास, हम अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर, या विचार कीजिए, आपके घर पर आया, बहुत अच्छा भोजन आप बनाए, अब एक रोटी जगह दो ठीक है, लेकिन खा गए 14 रोटी तो डॉक्टर कहते अभी 3 दिन तक ना खाइए, चलो 3 दिन का अपना भोजन तो बच गया, बात ऐसे सुनने की बात है, देखने की बात है, बोलने की बात है। तो ये श्राद्ध के पीछे केवल ये नहीं था कि भाई अच्छा भोजन बनाना, अच्छे लोगों को बुलाना, अब अच्छे लोग क्या बात है, लोग अक्सर पूछते हैं महाराज जी लोग कागले को क्यों खिले, ये वैज्ञानिक बात, भाई कम से कम यहाँ जितने बैठे हैं सबको मैं जानता हूँ, हमारा आपका बाप तो कागला नहीं बना, ये आपको बता, ये मैं गारंटी, जो काम काम करते हैं बेकार का उनका बाप कागला बनेगा ना, हमारा बाप तो बहुत अच्छा था, वो काय कागला बनेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में एक जबरदस्त बात है कि सब में परमात्मा देखते हैं, और किसी न किसी तरह से परमात्मा से निर्मित हर चीज का इन्होंने आदर करा है। अभी नागपंचमी दिन आप नाग की पूजा करते हैं और साल भर पर, एक बार मेरे पास कोई आए हिंदू थे, मैंने कहा आप शंकर की पूजा करते हो, नाग शंकर के गले में है, फिर आप नाग क्यों मारते, कुछ पता है, मैंने कहा ऐसी बात, आज विज्ञान भी कहता है जगत में जितनी चीजें हैं ये सब पर्यावरण को एनवायरमेंट को कंट्रोल करती, आप सुन के ताजुब करेंगे, कोई नाग कोई सांप, आपका अगर मन पवित्र है तो कभी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों के बाद, वेदों के बाद, तुलसी कृष्ण रामायण में बड़े सरल ढंग से आ गई, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हमारी आपकी बात तो छोड़िए, जब आप प्रसन्न होते हैं तो आजकल वैज्ञानिक लोग हमारे आपके उरोरा पर जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपके अंदर से उरोरा में सुगंध निकलती है, उसी सुगंध से ये पशु पक्षी भी जान जाते हैं कि ये खतरनाक नहीं अच्छा है। लेकिन हमारे आपके मन में जब बदले की भावना आती है, हमारे आपके मन में गलत विचार आता है तो हमारे ओरा में से दुर्गंध निकलती है, इसी गंध से पशु पक्षी जान जाते हैं। आप जंगल में जाइए, आज तक सुना कभी कि जंगल में नाग या शेर किसी साधु संत भगत या भरवाड़ को काटा दबोचा या मारा, कभी नहीं, जो लोग शिकार करने गए उन पर आक्रमण हुआ है। तो हमारा जैसा ओरा होगा, जैसे हम आप हैं भगत हैं तो 1 किलोमीटर तक कम से कम जाएगा, और जो दुर्गंध है वो 3 किलोमीटर तक जा सकता, गलत आदमी के दुर्गंध। तो कहते हैं कि आप अच्छा विचार लेकर के जंगल में जाइए, आप शेर और नाग के पास से गुजरिए, कभी आप पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन आप गलत विचार लेकर के जाइए तो 3 किलोमीटर के दायरे में नाग या शेर जो होगा आपकी तरफ दौड़ेगा और आप पर अटैक, वो जान जाता है गंध से, अगर थोड़ा इशारा कर दो। ये जो पशु पक्षी हैं इनको दिसंबर जनवरी फरवरी कुत्ता इनको ये ज्ञान नहीं है, मैं आपका गुरु हूँ, सब तो एक मर्यादा बोलूँ, साल में एक ऐसा समय आता है कि जो नारी होती है, जैसे भैंस है, एक गाय है, ये आपकी कुतरी है, साल में एक बार, वैसे तो 3-3 महीने बताया गया, लेकिन एक बार एक ऐसी दुर्गंध आती है, उसी दुर्गंध से कुत्ता बैल और वो समझ जाते हैं, उसी दुर्गंध के हिसाब से 1 लाख में गाय रहेगी, लेकिन वो वहीं जाएगा जिसमें से दुर्गंध है। कुतरे की भी बात है, दुर्गंध मतलब ऐसा नहीं है कैसी गंध निकलती जिससे वो समझ हित अनहित पशु पक्षी का। तो हमारे आंख के अंदर जो पवित्र विचार है उसे सुगंध निकलती, उसी सुगंध से जान जाते हैं कि व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं करते। गलत विचार होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो श्राद्ध का यह था कि आदमी अपनी नश्वरता को समझे, ये कोठी बनाने वाला मेरा पाप नहीं रहा तो इस कोठी में रहने वाला मैं कब तक हूं। फिर क्यों गलत ढंग से पैसा कमाना, गलत ढंग से कोठी बनाना, किसी को सताना, क्यों कर्म का फल तो मिलेगा। आपको बता रहा हूं, आप किसी भेष में रहे लेकिन कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो एक श्राद्ध के विषय में एक मनोवैज्ञानिक विचार है, अच्छा कर्म करके भी हम इस दुनिया से जाएंगे और गलत कर्म करके भी जाएंगे। लेकिन जो चार्वाक हुआ उसने बहुत अच्छी बात लिख दी कि बस पूछिए मत। वो कहता जब एक दिन मरना ही है तो जब तक जीना है पड़ोसी से उधार लेकर के घी पियो, आदर से रहो, और जाते समय थोड़े वो कहेगा कि हे भगवान मेरे घी का पैसा दे दे तब ये जाए। बहुत गलत असर पड़ गया तो आता है। चलो आपने उधार ले लिया, आपके बच्चे क्या करें? ये जीवन केवल आप तक है? जहां दो हैं वहां समाज है, आपके साथ आपकी पत्नी है वो भी समाज है, आपके साथ आपका लड़का है वो भी, जहां दो हैं वहां समाज है। और जो कुछ आप कर रहे हैं उसका समाज असर पड़ रहा है, आपके परिवार पड़ेगा। केवल अपना ही देखोगे बस, किसी और का नहीं देखोगे। जो अपना ही अपना देखता है वेदांत ने उसे जीव कहा, जो दूसरों का भी ध्यान रखता है वो परमात्मा है, और अपने सुख के लिए कुछ भी जो करने के लिए तैयार है वो शैतान है, राक्षस है, रावण है। और दूसरे को सुख देने के लिए जो हर तरह तैयार है वही भगवान, वही देवता है। आप सब अंग्रेजी पढ़े लिखे, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी का शब्दकोश उठा के देखें तो जहां पर देव शब्द आता है उसका अर्थ यही होता है कि जो आनंद दे, दुख उठा करके जो आनंद दे, वो गिवर ऑफ हैप्पीनेस। अब यही किसके साथ, राम के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ होगा। जो लेता ही लेता रहा वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन मैं एक आदर्श दे के जाऊंगा, बच्चों को सुख दे के जाऊंगा। मरेगा तो रावण, राम भी इस दुनिया में नहीं रहे तो हम कब तक रहेंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी केवल आप तक नहीं, आपके द्वारा, आपके परिवार का नाम, इसलिए केवल अपना अपना मत सोचो। इसलिए हमारे एक फिलासफर अंग्रेजी में भी हुआ, उसने भी बोला इफ डेथ इज एंड ऑफ लाइफ व्हाई शुड लाइफ लेवर बी। वो चार्वाक का बात नहीं हुआ, वो कहता है एक दिन सबको मरना है। वो चार्वाक वाली बात अपने जानते, इफ डेथ इज एंड ऑफ लाइफ देन व्हाई शुड लाइफ लेवर बी। जब एक दिन मरना ही है तो परिश्रम करना, ये करना क्या जरूरत है, लूटो फूटो खाओ झूठ बोलो कपट करो छल करो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं हमने किसी को लूटा तो हमें अच्छा लगे, लेकिन हमें कोई लूटे तो, इसलिए आत्मस्तर होते जो व्यवहार आपको आपके साथ करने पर अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार आपको किसी के साथ नहीं। कोई हमारा अपमान करता है, हमें नहीं अच्छा लगता, तो हमें भले किसी को मान ना दे लेकिन अपमान तो ना कर, भले हम किसी के हाथ में फूल ना दे लेकिन कांटा तो ना दे, भले हम किसी को प्रणाम वंदन नहीं कर सके लेकिन हाथ दिखाए तो नहीं, भले आप एक्टिव न बनो लेकिन पैसों तो बनो, भले हम मंदिर ना जाए लेकिन मंदिर की निंदा तो ना करें, जो जा रहे हैं उनको तो जाने दें, भले आप अच्छा काम ना करो लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उनको रोको तो नहीं, या विचार कर उसे भी फल मिलेगा, उसे भी चलेगा। तो इस स्वराज को समझने की बात है, जानने की बात। वैज्ञानिक कहते हैं कागला जो है ये मिष्ठान खाता है और आधे घंटे में उसकी बीट वहीं गिर जाती है। तो इस समय जो ये सब शीतोष्ण है, जो ये समय है, इसमें जो विष पैदा होता है, पॉइजन पैदा होता है, उसका ये कागले के बीट के द्वारा शोषण होता है। बल्कि डॉक्टर साहब, आप लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि कारण का पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी कागले कम हो गए, कम दिखाई पड़े, पहले बहुत थे। कहते जब से कागले कम हो गए हैं तब से बीमारियां भी ज्यादा, बीमारियां फिर। तो हमारी परंपरा में था कि ये जो 15 दिन का समय मिष्ठान का, मिष्ठान खाने से आपकी क्षमता बढ़ती है, और फिर हम चलते थे खाते थे, चलते थे। तो ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, वो कहते हैं कि शुगर खाने के बाद, पहले गुड़ लोग खाते थे, सारी देवी शुगर है, शुगर खाने के बाद जब आप चलते हैं तो ग्लूकोज बनते, बैठे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने 15 दिन तक मिष्ठान खिला करके एक शक्ति पैदा की, रोग प्रतिकारक शक्ति उधर से। लेकिन कहीं हम 15 दिन तक बैठे तो नहीं रहे, इसलिए तो नवरात्रि आ जाते, फिर हमें नचा दिया, कुदा दिया, सबको साथ मिला करके और उपवास भी कराए। तो पहले गणेश पूजन आया दर्शन का, फिर 15 दिन ये आया, फिर 9 दिन नवरात्रि आई। इतने दिन के समय में हमारे आप के अंदर वासना, पुरुष के, पुरुष नर नारी दो, बहुत वासना उठती है, और वासना का रूपांतर तो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम खड्डे में ना गिरे, हम गलत रास्ते ना जाएं, इसलिए ये पूजन से, एक दूसरे के मिलने से, मिष्ठान खाने से, नवरात्रि में सबके साथ, देखो सारी रात आप नाचोगे, अभी तो समय बदल गया, कहीं 12 कहीं 1, पहले सारी रात नाचो, नर और नारी, पुत्र और पुत्री, लड़का और लड़की, ये मिलकर नाचे। तो विज्ञान कहता है जहां आप मिलकर के नाचते कूदते वहां वासना कम है। और मनोवैज्ञानिकों ने कहा, बड़े प्यास रहो, नाचने वाले लड़का लड़की जो 24-25 साल या 20 साल के, नाचने वालों में इतनी वासना नहीं है जितने 80 साल बैठ कर देखने वाले, ये उम्र पर न जाए, इसका परीक्षण हुआ कि भाई कोई 80 साल का हो गया तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी कह दिया, आम का पेड़ 5 बरस का हो कि 50 बरस का, और बावर का पेड़ भी 1,00,000 बरस का होगा, लेकिन वो तो कांटा ही। तो कितने लोग कहते मेरी उम्र हो गई, मेरे पास भी आते हैं, कहते महाराज जी 100 में 2 साल कम है। मैंने कहा बावर के पेड़ हो कि आम के पेड़ हो, पहले वो बताएंगे, 2 साल कम है कि 4 साल कम। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जबरदस्त विज्ञान का सहारा लेकर मनो, इसलिए किसी की उम्र ना देखना, उसके विचार कई बार यहाँ तक देखा, खुद लोगों ने मुझे कहा, गुरु ग्रंथ महाराज जी 30 साल का था तो इतने विचार खराब नहीं थे, लेकिन जब से 7 साल का हो गया हूँ रोज शादी करने का विचार आता है, कहा है मैं इसको कैसे रोकूं, मैं साक्षी। तो ये उम्र देख करके, पेड़ की उम्र देख कर कुछ नहीं, इसलिए हमारे संतों को देखिए, कोई 4 साल का, कोई 16 साल, कोई 20, कितने ऊंचे हैं, और 150 वर्ष वाले कहां से कहां चले। इसलिए हकीकत को समझो, सत को समझो, ये जाति पाति उम्र फलाना ये सब कुछ नहीं है। रोज मंदिर, महाराज जी रोज मंदिर जाता हूं, तो रावण भी तो रोज मंदिर जाता। आपके वैचारिक अवस्था क्या, आपके विचार क्या, ये स्वयं पहले अपने को देखो। तो ये जो कागले को खिलाते हैं उसका दोष हो। इस जगत में परमात्मा के द्वारा बनी हुई चीज आपको लाभ दे रही है, इसलिए किसी को पालने का हक आपको। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़ा इतिहास मालूम है तो आपको बताता हूं, नहीं तो सुनिए। 1958 में चाइना को लगा कि छोटे छोटे पंछी हमारे खेत का बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो व्यवस्था करके सारे छोटे पंछियों खत्म कर दिया। 3 साल तक उनके खेत में कुछ पैदा ही, फिर विचार किया तो ये जो छोटे छोटे पंछी हैं, क्या कुदरत की व्यवस्था, आपके खेत में जो कीड़े हैं जो आप नहीं निकाल सकते, इन पंछियों दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो करके वो कर ले। तब उनको पता चला कि कुदरत की व्यवस्था कितनी अच्छी है। हम लोग खराब पढ़ते पढ़ते इसका आ गया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, पूछिए कितने कीड़े ऐसे हैं कि आप अनजान जगह में नंगे पांव चलोगे तो पांव से प्रवेश करके अंदर आकर के आपका सत्यानाश। लेकिन खराब लकड़ी का खराब पड़ने से क्या होगा, एक तो बिजली का जो है प्रभावित नहीं होगे क्योंकि बैड कंडक्टर आप इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरे कोई कीड़े भी आपके अंदर प्रवेश। लोहे की कढ़ाई में जो खाते उसका भी आ गया, मतलब हमारी हर चीज को स्वरूप आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप बाघंबर में बैठते हैं हमारे साधु जन, बाघंबर में ऐसी गंध है कि हम लोग जंगल में समस्या करते थे तो इसकी गंध से कोई भी जहरीले कीड़े इसके पास नहीं आते। तुलसी के पास, इसके पास, पीपल के पास आएगी नहीं, नहीं आप। तो हमने ये व्यवस्था की। तो इंद्रमदन जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पटेल, डॉक्टर सैनी और हमारे प्यारे आसिफ, आसिफ ने विषय तो अगले रविवार तो बहुत अच्छा दिया, वेद का दिया, वेद लिखने में 24 साल लगे थे, बहुत मेरे काले उम्र खत्म हो जाए। तो आज जो आपके सामने बात आई इसको समझे, जब भी रात का समय आए हमें मिष्ठान खाना, ये हमारी क्षमता को बढ़ाता। लेकिन ऋषियों ने नहीं कहा कि भाई 15 दिन बहुत खा लिया होगा, पहले लोग खेत में काम करने जाते, ये जब बना था तब उस समय खेती बहुत थी, सुबह खेत में जाके काम करते थे, दोपहर में आके 12 बजे खाते थे, फिर 1 घंटे आराम करके फिर जाते थे। तो हम खेत जाते थे, आते थे, मिष्ठान खाते थे, 1 घंटे आराम कर फिर जाते थे, तो चलने से ये जो शुगर ये ग्लूकोज बन जाते सबका। फिर ऋषियों ने सोचा कि भाई कुछ अमीर लोग, इसलिए नहीं कहा कि खेत में जाओ के काम करो, तुरंत नवरात्रि आ गई, 1-15 दिन में थोड़ी बहुत शुगर बढ़ी होगी तो 9 दिन नाचने कूदने से वो सब ठीक हो जाती है, ये विधि है। तो मेरी दृष्टि से सुराग हमें माता पिता की कृपा को याद दिलाता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, जाने के बाद भी श्रद्धा से याद करके उनके आदर्श वसूलों को देखें। हमारा बाप कितना अच्छा था या नहीं था, लेकिन जगत की नश्वरता का भी ज्ञान, और यही कि एक दिन हमें भी जाना है, इसलिए बहुत सोच समझ चलना है और समझे हमारे आसपास अगर कहीं दुख है तो उसके पीछे हमारा कर्म, हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है चाहे कुछ हो जाए। इसलिए परमात्मा दुख नहीं देता, दुख तो हम अपनी गलती से भोग रहे हैं, इसलिए सावधान होना। तीसरी चीज ये है, परमात्मा के द्वारा निर्मित, चाहे वो नाग है कि सांप है कि शेर है कि कागला, ये परमात्मा की व्यवस्था में ठीक है, इसलिए इस परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करो और अपने को बचने का उपाय करो। हम सब में परमात्मा देखेंगे, नाग को देखकर प्रणाम करो, शेर को देखकर प्रणाम करो, और मेरा अनुभव है कि कभी आपके अच्छे विचार होने से बिना बताए आदमी को तो बताना पड़ता है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सच पति, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। लेकिन ये पशु पक्षी कहते हैं परिचय देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी दुर्गंध सुगंध से ही परिचय लग जाएगा कि तुम अच्छे हो, भी नाक के पास जाकर न कहो कि मैं भगत हूँ, कथा मैं समझता हूँ तुम भगत हो, भी शेर के पास जाके न कहो कि मैं तो भगवान का पुजारी, वो अपने आप, हाँ आपको कहना पड़ेगा कि भाई मैं तो भगवान का पुजारी, ऐसा है। तो आजकल इस पर बड़ी खोज हो रही है, अमेरिका भी लगा है, ये लगा है विचारों के असर से। तो बड़े प्यार से कहूँगा कि आप लोग पूछे हैं तो जो थोड़ा सा सामाजिक है, मतलब एकता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, दूसरे याद करते, थोड़ी कथा वार्ता थी, कीर्तन था, काम करने का था, ये था, तो मनी का सर्कुलेशन है, अपने पूर्वजों के इतिहास भी जानना है, कैसे थे क्या थे, एक दूसरे का संगठन था, और ज्ञान था कि परमात्मा की बनी हुई चीज आदर करो, कभी न कभी उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब ठीक है, कागला बहुत काम काम करता है तो थोड़ा सा कान में रुई डालो, लेकिन फिर रात में बता भी नहीं मिलते, कितने जो चुस्त है ना, कहे महाराज जी 2 बजे से 4 बजे तक ढूंढा, कागला नहीं मिला, कौन आता, खा लूं कि नहीं खा लूं, मैंने कहा पड़ोसी बहुत काम काम करता है, इसको कागला ढूंढने की क्या जरूरत, आदमी ही कागला बनाए, इसलिए वो बेचारे रूठ के चले गए कि मेरा काम अब आदमी ही करना, तो हमें यहाँ धरती पर रहने की कोई जरूरत नहीं। तो भाई इस तरह है जो कहा, इसको थोड़ा आइए, कुछ भी हो जाए अपनी मर्यादा में रहें, और मर्यादा बनाने पर भी कुछ होता है तो उसका उपाय करें, लेकिन जानबूझ के कोई गलती जो है ना, अपने पूर्वजों की याद करें, एकता संगठन सबको जो बताया, ये सब मिला करके मैं श्राद्ध के पक्ष में हूँ, श्राद्ध है, लेकिन बताऊ पड़ोसी से उधार लेकर के बाप को आपने जब उधार लेके नहीं खिलाया तो मरने के बाद भी उधार लेकर सबको नहीं खिलाना, जब बाप जिंदा था तो 100 रुपया नहीं उधार ले, और अभी कहते हैं श्राद्ध तो करना पड़ेगा, और 500 उधार ले लिया किसी से फिर वो आत्मा, तो भाई उधार लेकर के श्राद्ध नहीं करना, ये आपको बता दूँ, ऐसा कहीं नहीं ले, उधार पे धार है, उधार जो है वो एक दिन तो लोग खीर पूरी खा के वाह वाह करेंगे, बाकी दिन हाय हाय करेंगे, मेरा पैसा नहीं मिलता, इसलिए दान पुण्य ये सब जो है ये आनंद से कीजिए, उधार लेकर के सिर पर भार रखे, कहीं नहीं लिखा है कि भार करके नहीं, हमारा बाप अगर प्यार करता है श्राद्ध हम 1000-2000 ले करेंगे, वो आके गालियां देगा तो बाप कभी खुश होने वाला नहीं, जो समर्थ हो कर सकते हो तो करो, नहीं तो भाव से जो करना, महाराज जो श्राद्ध नहीं किया कोई पाप तो नहीं लगे, मैंने कहा उधार लेके करोगे तो नहीं दे पाओगे, तो ये थोड़ा सा समझ उधार लेके कोई इंसान सुन जो है नहीं, कई बार लोग मेरे पास आते महाराज जी पैसा नहीं था, फिर डॉक्टर वगैरह समझते हैं जो है, तो पड़ोस 100 रुपया तो एक बार मुझे दे देते, फिर मैं दे देता हूँ भाई, जब तुम कमाना तो एक बार ले लेता हूँ, मैंने कहा पैसा मेरा हो गया तो आप इस मेरे बच्चे क्यों महाराज, नहीं उधार नहीं, जब तू कमाएगा तब ले, लेकिन मैं तो लेता हूँ, जब वो कह देते कि महाराज जी आपका दर्शन करने के लिए, हालांकि उनके मन में था कि भाई आपके दर्शन के लिए मैं उधार भी लेकर, वो भाव है, लेकिन उस भाव को मैं समझता हूँ, ऐसे चार इतवार का 400 रुपया हो गया तो कौन देना जाएगा, फिर वो ब्याज मान ब्याज हो गया, एक बात हो रहा वो आते हैं लोग मैं ले लेता हूँ, फिर कभी आपको भी पता लगे किसी को 20 रुपया दिया और मान लो कि पता चले उधार लाता है, भगवान ने आपको बोल दिया, लोग नहीं दर्शक कि आप पानी में डूब जाए तो चला जाता है, लेकिन होता क्या, जब भी वो याद आएगा मेरा 20 रुपया कम हो गया। एक बात का मुझे तो कहानी बड़ी याद आती है, जरूरत पर मैंने आपसे 20 रुपया लिया और मेरा काम हो गया सब कुछ, मैं 20 रुपया वापस करने गया तो आपने कहा कि स्वामी जी आप मेरे से 20 रुपया मांगे और आपका काम हो गया, मैं 20 रुपया जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे मांग लूंगा, लेकिन आपकी तरह प्रताड़ित होकर दुखी होकर जैसे आप मेरे पास मांगने आए थे ऐसे अपने काम न होने से दुखी होकर आपके पास कोई आए तो 20 नहीं आप दे सकते हैं, अगर 200 मांगे 200 देना, जिस दिन किसी दुखी को 20 की जगह 200 दे दोगे मेरा 20 रुपया वसूल हो गया, मुझे देने की जरूरत। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरा काम 20 रुपये का है तो आपने दिया, कोई मेरे पास आए मैं 200 दे सकता हूँ तो एक काम मुझे बहुत अच्छी लगी, तो यही आपसे कहूँगा हे भगवान आप सबको भगवान देने लायक बनाए और उधार लेकर कुछ ना करो, आपने कम ही भगवान ने तो हाथ दिया कितना सुंदर दिया, जिसके हाथ नहीं है वो दूसरों को खिला रहा है मैं देख रहा हूँ और मुंह में ब्रश लगा के पेंटिंग कर रहा है और हमारे दो हाथ फैला रहे हैं भीख मांग रहे हैं, ऐसा है तो श्रद्धा का जो सुनाया उस पर विचार कीजिएगा। आप सबको वंदन हरि ओम
गुरु
बारह 10 हुआ।